समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी,
उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी।
हर शय जहां हसीन थी हम तुम के अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी।
बचपन की यादों को ताजा करती हुई जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये गजल हर बार याद आती है। और आज ही के दिन जन्म हुआ था गजल के बादशाह जगजीत सिंह का। नई शुरुआत हो जिंदगी की या गमगीन माहौल या खुशी का माहौल, हर तरीके की जो गजल है वो जगजीत सिंह को ही याद कराती है।
That's right. In fact, the ghazal I think was rejuvenated when it was rendered in the mellifluous voice of Jagjit Singh. और शो की शुरुआत तो हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत सी कर ही दी है अपने उन हसीन यादों को, माजी की हसीन यादों को याद करके। बट बीता हुआ सुख भी कई बार आंसू ही टपका देता है।
जी बिल्कुल सारा, और मुझे याद आ रहा है कि फिर तसव्वुर मुझे माजी में लिए जाता है, दर्द दिल दर्द जिगर ताजा हुआ जाता है।
right.
तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब हम याद करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ जो है आंखों में आंसू आ ही जाता है।
That's very true. इसीलिए शायद कोई कहता है शायर के छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। And on that note, let's begin today's show. This is Saira Mujtaba with of course Farhad. आप लोग आवाज से पहचान गए होंगे और जगजीत सिंह की आवाज के आगे हम लोग की भी आवाज बर्दाश्त कर लीजिए।
जी बिल्कुल, पूरे आधे घंटे हम आपके साथ रहेंगे और देश और दुनिया के समाचार आप तक पहुंचाएंगे और अंत में याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को और उसके साथ थी हम बात करेंगे जगजीत सिंह के बारे में भी।
That's right, but let's start with the headlines for us.
जी बिल्कुल, तो आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया में हैं। उन्होंने कुआलालंपुर के माइंस एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में कल रात आयोजित प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। श्री मोदी ने लगभग 15,000 लोगों की सभा को संबोधित करते हुए भारत और मलेशिया के बीच प्रगाढ़ संबंधों का उल्लेख किया और प्रवासी समुदाय को दोनों देशों के दिलों को जोड़ने वाला एक जीवंत सेतु बताया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले वर्ष के आसियान शिखर सम्मेलन में भाग न लेने पाने के बाद मलेशिया आने का वादा किया था जिसे उन्होंने अब पूरा किया है।
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड दैट द इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट इज फेयर इक्विटेबल एंड बैलेंस्ड एंड इंश्योर्स कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स इंटरेस्ट। ही सेड एग्रीकल्चरल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एडिक्वेटली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया including maize, wheat, rice, sugar, soybean and poultry, have been kept outside tariff concessions. The minister added that the agreement aims to promote exports, generate employment and advance India's journey towards Viksit Bharat 2047.
The United States of America has now decided the first part of the bilateral trade agreement to strengthen its relation with India. Under this, the reciprocal tariff of 50% that was imposed on India in the United States will now decrease from 50% to 18%. Keeping in view the interest of farmers and dairy sector, the joint statement which was finalized between the United States and India and kept before the world has been welcomed across all sectors of the country.
Iska desh ke kone kone mein swagat hua hai.
Briefing media on the India-US joint statement in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said that the earlier 50% reciprocal tariff has now been reduced to 18% for Indian exports under the agreement. He pointed out that India now enjoys lower tariff rates compared to its neighboring countries like China, Pakistan, Bangladesh and Vietnam. Mr. Goyal highlighted that the deal safeguards the agriculture and dairy sectors, while several agricultural products such as spices, tea, coffee, cashew nuts, chestnuts, avocado, banana, mango, kiwi and papaya will attract zero duty in the US. He added that the trade agreement has been welcomed across all sectors of the country.
मेघालय में थांगस्को क्षेत्र के म्यांगसंकट में खदान विस्फोट के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, राज्य आपदा मोचन बल SDRF, विशेष बचाव दल SRT, जिला पुलिस और प्रशासन की टीम इस अभियान में लगी हुई है. कल 2 और शव बरामद होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है. इस बीच प्रभावित खदान स्थलों पर तलाशी अभियान का काम जारी है.
Home Minister Amit Shah arrived in Raipur last evening on a 3-day visit to Chhattisgarh. During his visit, Mr. Shah will participate in various programs related to internal security and development in the state. Today, the Union Home Minister will chair a high-level security review meeting on left-wing extremism in Raipur. Senior officials from the central and state governments, as well as representatives of security agencies, will take part in the meeting. Mr. Shah will later be the chief guest at the national conclave titled Chhattisgarh at 25, Shifting the Lens. Meanwhile, on 9th of February, Mr. Shah will attend the concluding ceremony of the Bastar Pandum Festival in Jagdalpur. In a message shared on social media, he said that the country is moving steadily towards achieving the resolve of making India completely free from Naxalism by the 31st of March 2026.
सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी अपनी पत्नी वेरोनिक हर्मनी के साथ 5 दिन के दौरे पर कल मुंबई पहुंचे. उन्होंने केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल से मुलाकात की और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित भारत सेशल्स व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया. इस अवसर पर राष्ट्रपति हर्मनी ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं और वे उस सहयोग को और बढ़ाने के लिए तत्पर हैं.
Japanese voters are casting ballots today in a snap parliamentary election called by Prime Minister Sanae Takaichi. Just months after she was elected by lawmakers, Takaichi decided to go to polls to seek public's mandate. If the coalition of Takaichi's Liberal Democratic Party with the Japan Innovation Party known as ISHIN wins 310 seats, it would be able to override the opposition-controlled upper chamber. She has vowed to step down if the coalition loses its majority.
इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू बुधवार को वाशिंगटन में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अमरीका ईरान वार्ता के संबंध में चर्चा करेंगे. अमरीका और ईरान ने शुक्रवार को ओमान में अप्रत्यक्ष रूप से वार्ता की थी. नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मानना है कि सभी वार्ताओं में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाना और ईरानी गठबंधन को समर्थन समाप्त करना शामिल होना चाहिए. इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमरीका की ईरान के साथ वार्ता बहुत अच्छी रही और अगले सप्ताह की शुरुआत में वार्ता होने की योजना है.
Moving on to sports now, in men's cricket, India defeated United States by 29 runs in the third match of T20 World Cup at Wankhede Stadium in Mumbai last night. Today there are 3 fixtures. New Zealand will take on Afghanistan at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai. Match will start at 11 a.m. In another clash, England will face Nepal at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3 p.m. While Sri Lanka will be up against Ireland at the R. Premadasa Stadium in Colombo, the match will start at 7 p.m.
और श्रोता, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुख करते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरों का. तो सारा, सबसे पहले क्या है चेन्नई में खास?
Well, Tamil Nadu Speaker M. Appavu has announced that the state government will present the interim budget on 17th of February. Speaking to reporters in Tirunelveli, Appavu said that the assembly session will commence in February, with Finance Minister Thangam Tenarasu presenting the interim budget. The advanced estimates for the upcoming financial year 2026-27 and the revised estimates for 2025-26 will be presented on the 20th of February. Another news coming in from Chennai, the V.O. Chidambaranar Port Authority in Tuticorin has signed a tripartite memorandum of understanding with Indian Railway Finance Corporation and Sagarmala Finance Corporation to explore joint financing of up to 15,000 crore rupees for its proposed outer harbour project. The project includes construction of bunds and breakwaters, capital dredging, land reclamation and related infrastructure under the hybrid annuity model. Moving on to Bengaluru, Karnataka Infrastructure Development Minister M.B. Patil met Union Railways Minister Ashwini Vaishnav in Bengaluru yesterday with a request to expedite various railway projects. He also requested for Bengaluru-Vijayapura-Vande Bharat Sleeper Rail, Bengaluru-Mumbai High Speed Rail Corridor and Bengaluru-Vijayapura Special Daily Train. The state minister submitted the memorandum with an appeal to consider the request in a positive manner. And moving on to Hyderabad, Farhat, Union Minister Kishan Reddy has challenged Telangana Chief Minister Revant Reddy to identify who is preventing him from taking action against former CM KCR. Speaking at a press conference at the BJP state office in Namapalli, Reddy criticized the Chief Minister for acting irresponsibly and blamed him for failing to fulfill his duties. He asserted that the Chief Minister cannot continue to evade his responsibilities by shifting the blame onto the central government or the BJP. So, Farhat, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी सारे, सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली से. तो रामलीला मैदान से आज 500 ई बसों का शुभारंभ किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आज दिल्ली सरकार के एक वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज से 2 मार्च तक दिल्ली सरकार जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करेगी. उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत दिल्ली के सभी विधायक अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड सीधे जनता तक पहुंचाएंगे. वहीं दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी सत्याग्रह सभागार में कल कौशल मेला का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में देश के 10 से अधिक कौशल विश्वविद्यालयों और राजधानी के 100 से अधिक कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. इस सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने किया. श्री गोयल ने अपने संबोधन में बताया कि कौशल और नवाचार से ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा. और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं. बृहन मुंबई नगर निगम मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से आने वाले लगभग 4,000 तीर्थयात्रियों के लिए चिकित्सा परीक्षण आयोजित करेगा. ये कदम सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय द्वारा जारी अद्यतन स्वास्थ्य आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के बाद उठाया गया है. वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू संज्ञा नहीं बल्कि विशेषण है. मुंबई में संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू पहचान एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत छत्र है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि सभी नागरिक अपने वर्तमान धर्म की परवाह किए बिना एक ही वंश और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं. और अब पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं. तो निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए. आयोग ने पहले भी राज्य को इस मुद्दे पर लिखा था, लेकिन भुगतानों के निपटान के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण फिर से ये निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने निर्वाचन आयोग से विशेष गहन पुनरीक्षण सुनवाई प्रक्रिया की समय सीमा 14 फरवरी तक आने का औपचारिक अनुरोध किया है. हालांकि सुनवाई का मूल कार्यक्रम कल समाप्त हो गया. श्री अग्रवाल ने बताया कि सभी जिलों में अभी तक 100% पूर्णता दर प्राप्त नहीं हुई है. कल शाम आयोग को भेजे गए एक पत्र में सीईओ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तरी कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, मालदा और कुर्सियांग सहित कई क्षेत्रों में लगभग 3% से 4% मतदाता अभी भी सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं. और अब हम अपने अगले सेगमेंट में महानगरों के मौसम का हाल जानेंगे. तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की. तो आज हल्की धुंध छाई रहेगी. न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस. अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. और वहीं कोलकाता की बात की जाए तो सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
So mostly we can say, Farhat, that the entire country is now probably experiencing pleasant weather, because even in Delhi, ab wo kadake wali thand chal chuki hai. But nonetheless, it's a very treacherous weather, because sometimes people tend to feel very warm during the day and they peel off their warmers. But that is the dangerous thing. Usi wakar thand asar kar jati hai. To kuch bhi ho, light sweater kam se kam aap pehne rahiye. Itni bhi garmi abhi mat manaiye. If we talk about other cities, Chennai is expected to have a partly cloudy sky today. Minimum temperature was 22, while maximum will be around 31 degrees Celsius. Bengaluru will have a mainly clear sky and temperature will hover between 16 and 30 degrees Celsius. While in Hyderabad, there will be fog or mist in the morning, but a cloudy sky later throughout the day. And temperature in Hyderabad will hover between a minimum of 16 and a maximum of 31 degrees Celsius.
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं. तो सबसे पहले बात सन 1872 की. आज ही के दिन अंडमान जेल में शेर अली ने भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या की थी.
That's right. And if we take the listeners back to the year 1785, Farhat, on this day, Warren Hastings, who was the Viceroy, the British Viceroy, he left India.
और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से एक नाव के जरिए जापान के लिए आज के दिन रवाना हुए। वहीं 1986 में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई।
That's right. In fact, when you were talking about that event, when Subhash Chandra Bose, he started his journey, he was not alone.
Ji.
He was with his secretary, who was Major Abid Hassan, and they traveled in a submarine. So that was the trivia associated with that event. Yeah, in 1936, Jawaharlal Nehru was elected as the president of International Congress. Also, on this day in 1986, Farhad, Sister Alfonso, she was beatified by His Holiness Pope John II at Kottayam. In fact, she was the first woman from India to be raised to this honor, to get the, you know, honorific of a saint.
And 1952 ki agar baat ki jaye to Maharani Elizabeth, Britain ki Maharani aur Rashtramandal Desho ki Adhyaksh bani. Wahi 1994 mein khelo ki agar baat karein to Kapil Dev ne test matchon mein sabse adhik wicket lene ka Richard Hadley ka vishv record toda tha.
Right, that's right. और वो टोटल नंबर ऑफ उनके विकेट्स हुए थे 432,432. There are some more events. Well, for the first time in the country, prepaid taxi service scheme was established at New Delhi Airport in 1986. और आज जो है हम लोग फरहत जो है ये prepaid taxis मतलब they are you can say saver, life saver. At the moment when you get out from the you can say airport, सबसे पहले आप जो है टैक्सी बुक करते हो या तो किसी aggregator पे और या फिर किसी private prepaid taxi booth पे जाते हैं. So that was a historic, definitely historical day. And on this day in 1989, Miss Gro Harlem, she was the PM of Norway. She was awarded the 1988 Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development. Also on this day in 1993, India and Spain signed 4 agreements as the then Spanish Prime Minister, Felipe Gonzalez, began his 2-day visit in New Delhi.
और अब हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका शोभा गोटू के बारे में. उनका मूल नाम भानुमती शिरोडकर था. वो एक ऐसी शास्त्रीय शिल्पी थी जिन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व भर में ख्याति दिलाई. शोभा गोटू को ठुमरियों की रानी कहा जाता था. उन्होंने ठुमरी के अतिरिक्त कजरी, होरी और दादरा कई सारे उपशास्त्रीय शैलियों के अस्तित्व को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. शोभा गोटू ने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में भी गीत गाए. सन 1972 में आई कमल अमरोही की फिल्म पाकिजा में उन्हें पहली बार पार्श्व गायन का मौका मिला. इसमें उन्होंने एक भोपाली बंधन बाधो गाया. इसके बाद 1973 में फिल्म फागुन में मोरे सैया बेदर्दी बन गए कोई जायो मनायो. और उसके बाद 1978 में उन्होंने मैं तुलसी तेरे आंगन की शोभा जी ने एक ठुमरी गाई. तो आइए सुन लेते हैं वही ठुमरी.
Today we are also remembering an educationist and politician who served as the Vice President of India from 1962 to 67 and President of India from 67 until his death in 1969. Yes, we are talking about Zakir Hussain. And well, Mr. Zakir Hussain, he was though born in Hyderabad in an Afridi Pashtun family, he completed his schooling in Etawa and he went on to study at the Mompton Anglo-Oriental College, jisko aaj sab log Aligarh Muslim University ke naam se jante hain. He was a close associate of Mahatma Gandhi and a founding member of Jamia Millia Islamia, which was established as an independent national university in response to the non-cooperation movement. He served as the university's vice chancellor from 1926 to 1948. And unki agar baat ki jaye, then it was in 1963 that he was conferred the Bharat Ratna as well and elected as the president of India in 1967. He was succeeding Sarvepalli Radhakrishnan and became the first Muslim to hold the highest constitutional office in India. Also the first incumbent to die in office and had the shortest tenure of any Indian president. और जो लोग जानना चाहते हैं तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में बहुत ही खूबसूरत सा उनका जो है मज़ार भी बनाया गया है, स्टोन में, वन शुड विजिट दैट. Another very great, you can say, literary luminary that we are remembering today on his birthday is Ashok Chakradhar, an author, poet, and former head of department of Hindi at Jamia Millia University. And after serving for 29 years, he took a VRS but and focused his work towards propagation and development of Hindi language. और खास तौर से अगर देखा जाए हिंदी भाषा की तो उन्होंने बहुत ही सेवा की है. एंड व्हाट अ पर्सन ही इज, यू नो, हिज नॉलेज एंड हिज डिक्शन, हिज ओरेशन, एवरीथिंग इज जस्ट सो, यू कैन से इज जस्ट फ्लॉलेस.
जी बिल्कुल. और वाह वाह एक टीवी शो आता था उसमें उनकी कविताएं बहुत याद की जाती हैं. इसके अलावा फिल्म जो है एक कार्यक्रम था छोटी सी आशा, तो उसमें उन्होंने खुद किरदार भी निभाया और अपनी कविताएं लिखी, तो वहां से उन्होंने और प्रसिद्धि पाई. इसके अलावा सारा मुझे एक बहुत ही उनकी प्यारी सी कविता है जो मुझे अभी याद आ रही है कि मुझे प्यार की जिंदगी दे दे, मुझे गीत की जिंदगी दे दे, मैं जिंदगी को गाऊंगा, मैं जिंदगी को सुनाऊंगा.
क्या बात है. एंड इनफैक्ट कुछ फिल्मों में भी उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की है. और एक ब्रिज भाषा की जो है एक पिक्चर आई थी जमुना किनारे, 1984 ही रोड द स्टोरी ऑफ दैट. एंड देर आर अदर फिल्म्स एंड दैट यू नो आर रिटन बाय हिम एंड समटाइम्स ही हैज आल्सो डायरेक्टेड. देर इज अ टेलीफिल्म कॉल्ड गुलाबरी, जीत गए छन्नो, मास्टर दीपचंद, हाय मुसद्दी, झूमे बाला झूमे बाली, तीन नजारे, बिटिया एंड सम टेली सीरीज लाइक भोर तरंग, ढाई आखर, बुआ भतीजी, बोल बसंतो एंड सम इफ यू यू नो सम डॉक्यूमेंट्रीज दैट ही हैज मेड आर पांगुगिरी लांघे, गोरा हट जा, साक्षरता निकेतन, विकास की लकीरें एंड हर बच्चे को कक्षा पांच. ये है अशोक चक्रधर की पर्सनालिटी इन अ फ्यू मोमेंट्स दैट वी हैव ट्राइड टू सम अप.
जी बिल्कुल सारा. और इसके अलावा आशा और सपनों के बारे में वो हमेशा से ही लिखते रहे उनका, क्योंकि मानना था कि सपने जो भी देखे मैंने, सपने वो सब पूरे होंगे, जो भी चाहत है दिल में वो सब दिल को मिलेंगे. तो बहुत ही आशावादी कविताएं वो लिखते थे ताकि जो युवा जो लोग हैं वो इस चीज को समझें और मेहनत के बल पर आगे बढ़ें.
दैट्स राइट. इनफैक्ट दैट इज द प्रॉब्ली द रीजन दैट ही इज वन ऑथर, बिकॉज वेरी फ्यू ऑथर्स एंड राइटर्स दे actually contribute to children's literature, but उनका उसमें भी योगदान है. इनफैक्ट कोयल का सितार, स्नेहा का सपना, हीरों की चोरी, एक बगिया में, दीज आर वेरी रिनाउंड यू नो हिज वर्क्स इन चिल्ड्रंस लिटरेचर. एंड ही वॉज फैसिलिटेटेड विद द पद्मश्री इन द ईयर 2014 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
और अब हम आगे बढ़ते हैं और याद कर रहे हैं देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक कल्पना दत्त को. उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी सूर्य सेन के दल से नाता जोड़ा. 1933 में कल्पना दत्त पुलिस से मुठभेड़ होने पर गिरफ्तार की गई. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयत्नों से ही वो जेल से बाहर आ पाई और अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया.
Today we are remembering K.M. Munshi or Kanhaiya Lal Manik Lal Munshi, whom the world known, you know, he's better known as Ghanshyam Vyas to the world. And today is his death anniversary. An Indian independence movement activist, politician, writer from Gujarat. He was a lawyer by profession and later turned to author and also entered politics. And he's a very well-known name in Gujarati literature. Farhat, he founded the Bharatiya Vidya Bhavan in the year 1938. He wrote his works mainly in three languages, Gujarati, English and Hindi. And before independence, he was part of the International Congress. And after independence, he joined the Swatantra Party. He held several important posts like Member of Constituent Assembly of India, Minister of Agriculture and Food of India, and many other important posts.
और सारा अब बात हम कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसकी गजल जो है हमने शुरुआत में अपने श्रोताओं को सुनाई थी. 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह का शुरुआती सफर किसी फिल्मी स्ट्रगल से कम नहीं था. जालंधर से कुरुक्षेत्र तक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखी और फिर किस्मत आजमाने के लिए वो सपनों की नगरी यानी मुंबई पहुंच गए और वहां उन्होंने पेइंग गेस्ट बनकर दिन काटे, विज्ञापनों के लिए जिंगल तक लिखे और छोटे मोटे फंक्शन में परफॉर्म तक किया ताकि गुजारा भत्ता मिल सके उन्हें. और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई चित्रा सिंह से, जो पहले उनकी हमसफर बनी और फिर संगीत की दुनिया की सबसे मशहूर जोड़ी.
दैट्स राइट. एंड इनफैक्ट अभी उनकी जोड़ी के भी हम लोग कुछ गाने तो सुनाएंगे ही, लेकिन अगर कुछ बात की जाए दैट हिज स्टाइल ऑफ कंपोजिंग एंड गायकी इज कंसिडर्ड एज बोल प्रधान, वन दैट लेज एम्फेसिस ऑन वर्ड्स. तो अब क्योंकि बैकग्राउंड में गाना शुरू हो चुका है तो क्यों ना ये खूबसूरत सा गाना पहले सुना जाए.
बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों।
In fact, Farhad, that his emphasis on words, जो शायरी पे उनका हमेशा emphasis रहा है, that is actually highlighted in his music that he gave for films such as Prem Geet, Arth and Saath Saath, and even TV serials Mirza Ghalib and Kehkasha. In fact, we can say that Mirza Ghalib की शायरी revive भी बहुत बड़ा योगदान है जगजीत सिंह को, at least to non-Urdu speakers. You can say he brought Mirza Ghalib and other great shayers into the houses of people. And that was the revival of Ghazal. And he's considered to be among the most successful Ghazal singers and composers of all time. और बात की थी हमने उनकी music की भी, उनके ग़ज़लों की, उनकी आवाज की, इन द फिल्म अर्थ. सो व्हाई नॉट लिसन टू दिस ब्यूटीफुल गजल.
तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो.
वहीं 1975 में आई उनकी एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स ने रातों रात उन्हें स्टार बनाया, और उन्होंने भारी भरकम शब्दों वाली गजलों को आसान धुनों में पिरोया ताकि वो हर किसी के दिल को छू सके.
मेरी नजरें भी ऐसे काफिरों का जानू ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं, निगाहें मिलते ही.
एंड जिक्र किया था हम लोगों ने फरहद, दैट ही ब्रॉट मिर्जा गालिब अगेन इन टू द पीपल्स ऑफ, यू नो, इन टू द हाउसेज ऑफ पीपल एंड स्पेशली टू नॉन उर्दू स्पीकर्स. और जो मिर्जा गालिब का जो उन्होंने जो सीरियल बनाया था, गुलजार बनाया था, उसमें क्या ही गजलें उन्होंने गाई हैं. और वन सच गजल इज दिस, लेट्स लिसन टू इट.
मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में, कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, शब हाय हिजर को भी रखूं गर हिसाब.
और संगीत की दुनिया में उनकी धाक ऐसी थी कि उन्होंने भारत का पहला डिजिटल सीडी एल्बम बियॉन्ड टाइम पेश किया.
दैट्स राइट, इट केम इन द ईयर 1987 फॉर द फर्स्ट डिजिटली रिकॉर्डेड रिलीज इन इंडिया एंड रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट. ही यू नो ही कोऑर्डिनेटेड विद सितार प्लेयर रविशंकर एंड अदर लीडिंग फिगर्स ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिकल एज वेल एंड ऑफ लिटरेचर एज वेल. एंड ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003. बात हम लोग कर रहे थे ना कि फरहत की कोई भी मूड हो आपका, कोई भी घर का मौका हो, आपको जगजीत सिंह याद आते ही हैं. हर इंसान ने अपनी तन्हाइयों में जगजीत सिंह को तो जरूर सुना है. बट क्योंकि हम लोग तन्हाई की बात नहीं करेंगे, जाते जाते ये खूबसूरत सा गाना सुनते हैं और ये हम लोग हमेशा उस घर याद करते हैं जब हम लोग अपने घर को सजा रहे होते हैं.
देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर.
ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा
अंत में चलते चलते ये कहना चाहेंगे, गम में भी खुशी है, खुशी में भी गम है, जिंदगी में सब कुछ है, बस तू ही कम है।
और इसी के साथ दीजिए इजाजत,
नमस्कार।
ये घर बहुत हसीन है।